शक्तियां मन बुद्धि संस्कार
मैं आत्मा हूं ओम शांति। आज का विषय है आत्म अभिमानी कैसे बने, है ना? तो आज तक हमने सुना था कि हम समझते थे मैं माना एक हूं, सारा संसार कहता है, साइंस भी कहता है कि एक शक्ति है, तब कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, क्योंकि साइंस ने हमको अब तक पढ़ाया कि एक शक्ति है। वास्तव में इस सारे ब्रह्मांड के अंदर दो शक्तियां हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। शरीर और आत्मा दो चीजें हैं। ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, ये पांच तत्व है। तो इससे ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको आत्मा कहते हैं। तो उस आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं। आत्मा का अच्छी तरह से अगर ज्ञान समझ में आता है तो आत्मा को समझकर अगर परमात्मा को याद करते हो तो उसकी शक्ति को हम ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो भक्ति में भी हमने भगवान को बहुत याद किया है लेकिन बिना समझ के आत्मा समझा नहीं है, यही एक अंतर है। हमसे भी बहुत तपस्या किया है, इसलिए शास्त्रों में कहते हैं विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है, कि तपस्या ही सब कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो संगम पर शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों को ये ज्ञान दिया है, बच्चे दो शक्तियां हैं, एक नहीं, शरीर अलग है। शरीर को चलाने वाले, तब हम कहते किसी ने जन्म लिया, कोई शरीर छोड़ के गया, कौन गया वो, उसका ज्ञान सारे शास्त्रों में या कहीं भी नहीं दिया अभी तक। तो इसलिए यहां बाबा ने सबसे पहला ज्ञान है, अगर ये समझते हो तब हम आत्म अभिमानी बन सकते हैं, आध्यात्मिक कहेंगे हमको। तो आत्मा क्या चीज है? ये जैसे एक सफेद चमकता हुआ सितारा जैसे आकाश में दिखाई देता है, ऐसे सफेद है, वाइट सफेद शक्ति इस प्रकृति के बीच में बैठती है और आंखों के द्वारा देखती है, मुख के द्वारा बोलती है, इस शरीर के कर्मेंद्रियों के द्वारा हर कर्म करने वाली मैं आत्मा हूं। जब भी आप कहते हो, हम पहले भी कहते थे मेरा हाथ, तो कौन कहता है मैं कौन, अलग करते हम, लेकिन फिर भी समझ नहीं था, किसी ने समझाया नहीं था। अब आकर के बाबा ने बताया कि आत्मा के पास तीन शक्तियां हैं। एक मन है, जो विचार चलता है तो मन दो प्रकार से विचार करता है, उसका भी ज्ञान चाहिए कि मन मेरा क्या करता है, तो मैं मन के द्वारा क्या कर रहा हूं। फिर मेरे पास और एक शक्ति है जो अब तक साइंस ने हमको नहीं पढ़ाया है। तो बाबा ने आके कहा, बच्चे आपके पास बुद्धि भी है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि तीन प्रकार से काम करती है। फिर उसके बाद इस शरीर के इंद्रियों के द्वारा एक एक सेकंड जो जो कर्म करते हो आप, उस आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है, और हर रिकॉर्ड का जो भी कुछ भरते हो उसका आवाज उसका फल आत्मा को भोगना पड़ता है। उसको कहते हैं फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, हर एक कर्म का फल है। फिर आप कहेंगे हमें पता नहीं था, फिर उसको इंग्लिश में कहते हैं देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। तो हमें पता नहीं था, कौन माफ करे हमको? जो अंदर आपने कर्म किया था, आपने भरा हुआ है, उसका आवाज आपको सुनना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें बाबा यहां सावधानी देता है, बच्चे कर्म करते समय कौन सोच रहा है, कौन ये कर रहा है, इसका क्या होगा, इसका समझ कर अगर आप कर्म करते हो, तब का सोच समझ के कर्म करो, तब कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज्ञान चाहिए अच्छी तरह से, ये मन क्या करता है। देखो अभी आराम से यहां बैठते हो आप, तो अपने आप को स्व का दर्शन कहते हैं, स्वयं का दर्शन करो, मैं कौन। हां आत्मा हूं, तो आत्मा क्या करती है, तो एक जो पुराने कर्म भरे हुए हैं, वो मन में निरंतर संकल्प के रूप में जागृत होते रहते हैं। एक पुराने विचार मन में आता है, देखो आप यहां बैठे बैठे 10 साल पहले आपको किसी ने कुछ कहा और 15 साल पहले कुछ किसी ने कुछ कहा, वो तुरंत याद आता है, तो आपको पता होता है ये अभी का नहीं, ये पुराना है। और एक विचार है, मन वर्तमान में कुछ संकल्प निर्माण करता है, क्रिएटिव पावर कहते हैं उसको। तो अभी वर्तमान में किसी को देखते ही अच्छा या बुरा आप सोच सकते हो, तो विचार करना ये आपके हाथ में है। अभी ये दो मेन शक्तियां है विचार करने की, एक पुराना एक वर्तमान। फिर बुद्धि भी तीन प्रकार से काम करती है, एक मन के द्वारा जो विचार आया तुरंत बुद्धि कहती है, जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ है तुरंत निर्णय देती है, ये विचार बहुत अच्छा है, विचार के ऊपर निर्णय देता है, विचार के ऊपर गलत निर्णय या अच्छा निर्णय, ये बुद्धि की स्वच्छता के अनुसार है। जैसे दर्पण है, दर्पण के सामने जाके खड़ा हो जाओ, अगर दर्पण स्वच्छ है तो आपका चित्र जैसा है वैसे दिखाई देगा। अगर दर्पण स्वच्छ नहीं, दर्पण के अंदर कोई खराबी नहीं है लेकिन मिट्टी लगी हुई है, तो आप सामने खड़े हो जाओ तो आपका चित्र जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता है, तो दर्पण के ऊपर मिट्टी है, इसलिए रोज दर्पण को साफ करते हैं। तो हमारे मन में अगर गलत विचार चलते हैं तो उसका प्रभाव बुद्धि रूपी दर्पण पर पड़ता है, तो बुद्धि के सामने कोई भी विचार आता है वो ये अच्छा ये गलत है तुरंत निर्णय नहीं देता है, सही निर्णय नहीं देता है। इसलिए कि बुद्धि का काम निर्णय देने का, निर्णय देने के बाद बुद्धि नेत्र है, देखता है, तो निर्णय लेने के बाद देखता है क्या विचार है, क्या चीज है ये, देखने के बाद फिर अनुभव करते हो आप, बुद्धि अनुभव करती, इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं, एक कहते हैं मैड, जिसकी बुद्धि काम नहीं करता, बुद्धू है टोटल, और एक कहते हैं डल इंटेलेक्ट, और एक कहते हैं शार्प इंटेलेक्ट। किसी बच्चों को एक दफा पढ़ाओ, हर शब्द अच्छी तरह से दोबारा रिपीट करता है, बहुत बुद्धिमान है, शार्प इंटेलेक्ट है। एक एक बच्चों को 10 दफा भी पढ़ाओ तो भी याद नहीं रहता है, तो कहते हैं डल इंटेलेक्ट, बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है। तो बुद्धि मेरी क्या क्या करती है ये पहले पता होना चाहिए, समझ के काम करो। जैसे हमें दो हाथ है, दोनों एक ही जैसे है, तो ये हाथ कहां उपयोग करना चाहिए, ये हाथ कहां उपयोग करना चाहिए, उसका ज्ञान हमें माता गुरु ने बचपन में ही दिया है। बच्चे इस हाथ से खाना खाना चाहिए, है ना। तैसे भगवान को कहते वो कौन है, त्वमेव माता श पिता त्वमेव, कहते मां बाप है, किसके शरीर के नहीं आत्मा के है। तो आत्मा को ज्ञान देते हैं कि आपके पास ये मन है, दो हाथ है, ये मन कहां यूज करना चाहिए, ये मन क्या करता है, ये बुद्धि क्या काम करती है। फिर उसके बाद जो भी आप कर्म करते हो वो संस्कार बनता है। फिर संस्कार दो प्रकार से बनते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। अभी आप यहां बैठे हो, मन में कुछ विचार आया चला गया, कोई हर्जा नहीं, कुछ नहीं होगा। मन में विचार आया, बुद्धि ने फील किया, सूक्ष्म दाग पड़ गया। आप कहेंगे मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन बुद्धि ने महसूस किया, फील किया, सूक्ष्म दाग, उसको कहते हैं सूक्ष्म संस्कार। फिर मन ने मैं संकल्प किया, बुद्धि ने फील किया, तुरंत हाथ से उठा करके आपने कुछ कर्म किया, एप्पल को देखा आपने, हाँ बहुत अच्छा है, कुछ नहीं होगा, एप्पल को देखते मुंह में पानी आ गया, ओ खाना चाहिए था, पता है मेरा हाथ लगने वाला है, बहुत दूर है, तो भी फील हुआ, सूक्ष्म संस्कार बन गया, दाग पड़ गया। फिर उठा उठ करके आपने जाके हाथ से उठा के खाया, इंद्रियों से कर्म किया, तो स्थूल कर्म हो गया। तब प्रश्न आता है, ये दो प्रकार के संस्कार, आज बाबा ने कहा आत्मा संस्कार ले जाती है, आत्मा के अंदर संस्कार भरे हुए हैं, तो संस्कार जो ले जा रही है, संस्कार से आपका शरीर की रचना होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रॉस एक्शन इज फिजिकल बॉडी, ये शरीर के अलग अलग रूप रंग कौन बनाता है? काला गोरा बच्चा जन्मते ही लंगड़ा है, अंधा है, काला है, गोरा है, कौन भगवान करता है ऐसा? जिसको इसका ज्ञान नहीं है तो कहते भगवान करता है ऐसा, है ना? तो भगवान स्वयं आकर के अब ज्ञान देता है कि नहीं बच्चे, आपके कर्मों का फल है ये, आप इस शरीर में बैठकर, आपके पास ये शक्तियां है, इसके द्वारा कैसे कर्म करते हो आप, इस शरीर के इंद्रियों को कैसे यूज करते हो, उसका ज्ञान आपको दिया है, उसके द्वारा जैसे कर्म भरते हो उसका फल। अब हम चाहते हैं सत्युग में जाना है, लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है, स्वर्ग में आना चाहते हो, हां आना तो चाहते हो, लेकिन ऐसे संस्कार से संसार बनता है। सिर्फ ज्ञान सुनने से आप स्वर्ग में आएंगे? समझ में तो आया है, लेकिन नियम है सृष्टि के अंदर, एक बीज अगर आप खेती में डालो तो 100 दाना लगते हैं, अगर एक बीज नहीं डालो कुछ उगेगा? तो यहां भी आप कहेंगे हम ज्ञान सुनने से हमारा जीवन बदलेगा, श्रवण से कभी भी आचरण नहीं होता है, खाना खाने से मोटा नहीं बनता है, खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, हजम करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण के बाद आप पूछ लो अपने आप से, क्या मैं आत्मा हूं? बाबा ने तो कहा, बहन जी ने 7 दिन का कोर्स कराया कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, इतने सालों से हम आए शरीर समझ करके, अभी कहां से आए ये? इतने सालों से सबने कहा, आप भी कहते हो मैं सच्चे दिल से बात करता हूं, कि ये दिल बात करता है? हाथ भी लगाते हो, अभी भी कहते हो? आत्मा का ज्ञान समझने के बाद भी आपका हाथ कहां जाता है? मैं सच्चे दिल से बोलता हूं, तो ये दिल बोलता है, ये हार्ट बोलता है, ये निकाल के दूसरा भी लगाते हैं, इसका ऑपरेशन भी करते हैं, तो आत्मा का ऑपरेशन होता है, आत्मा अविनाशी है, है ना? तो आत्मा कहां है, दिल कहां है? आज ही बाबा ने कहा था, दिमाग और दिल, आज सवेरे मुरली में सुनाया, तो सोचा कभी मन क्या है? दिमाग, बुद्धि, दिल, दिल महसूस करता है, अनुभव दिल करता है, बुद्धि को यह आध्यात्मिक भाषा है। हम कौन सी पढ़ाई पढ़ते हैं? भौतिक पढ़ाई तो नहीं पढ़ते ना, डॉक्टर की पढ़ाई तो नहीं कर रहे, शरीर कैसा बन गया, कौन बनाता है, खून कैसे बनता है, उसकी तो पढ़ाई नहीं है ये, उसको कहते हैं फिजिशियन, जो शारीरिक शरीर का ज्ञान जहां मिलता है ना, उसको डॉक्टर कहते हैं, फिजिशियन कहते हैं, शरीर का पूरा ज्ञान है, शरीर की कैसी रचना होती है, कैसा निर्माण होता है। हम कौन सी यूनिवर्सिटी में बैठे अभी? रूहानी यूनिवर्सिटी है, यहां सिर्फ आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। तो आप सुनते समय ये याद होना चाहिए, मैं आत्मा सुन रही हूं और आत्मा का ज्ञान सुन रही हूं, शरीर के तरफ नहीं आना, शरीर का ज्ञान हो गया तो रूहानी भाषा है ये। तो आत्मा का दिल जो है वो बुद्धि है, बुद्धि महसूस करती है, अगर बुद्धि नहीं काम नहीं करती उसको मैड कहते हैं, उसको पता चलेगा खट्टा क्या है, मीठा क्या है, अच्छा क्या, शांति क्या है, अशांति क्या है, पता ही नहीं है। तो बुद्धि अनुभव करती है, तो इसलिए हमको जानना चाहिए तरह से मन क्या करता है, क्योंकि हमको आज तक पढ़ाई में साइंस ने जो पढ़ाया कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का, मन और संस्कार है, बुद्धि कहां है, सिर्फ भारत में माताएं जब मंदिर में जाती है, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, है ना, हमारे पास बुद्धि नहीं भगवान देगा, नहीं, बुद्धि हमारे पास है, बुद्धि को कैसे यूज करना है तो वो बाबा ज्ञान देता है। तब कहा बाबा ने बुद्धि योग मेरे से जोड़ो, कि बुद्धि ग्रहण करती है, इसलिए कहा कि मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, तब कहते हैं आत्म अभिमानी होके बैठो, अर्थात देखो आपके आंखें खुली है, मुझे ही देख रहे हो, मुझे लगता है आंखें खोल के बैठे हमको ही देख रहे हैं, देखते देखते भी देख लो, अरे कल ये काम करना है, ये कहां विचार आया, किसके अंदर विचार आया, ये किसने आपको याद दिलाया, सुन भी रहे हो आप, बुद्धि भटकती है, बुद्धि के अंदर मेमोरी है, स्मृति है, पुरानी स्मृति जागृत हुई, अरे कल इसको फोन करना है, तो बुद्धि भटकती है। तब कहा जाता है गिव अटेंशन, ध्यान दे दो, बुद्धि मन और बुद्धि दोनों एक हो तो वहां एकाग्रता है। इसलिए भारत के अंदर देखो कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, दो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन दो हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है, कौन सी विधि है, छोटी अंगुली को लगनी चाहिए, विधि पूर्वक अंगुली से अंगुली जोड़ते हो सिस्टमेटिकली, तब इसको नमस्ते कहते हैं। ऐसे ये भौतिक हो गया, आध्यात्मिक दृष्टि से दो शक्तियां हैं, मन और बुद्धि को जोड़ना है, उसका नाम है एकाग्रता। जो हमको आज तक पढ़ाई में पढ़ाया, फोकस ऑफ माइंड इज कॉन्सेंट्रेशन, मन को एकाग्र करो, तो मन जोड़ दिया आपने, बुद्धि कहां, बुद्धि भटकती है, बुद्धि के अंदर और कुछ ख्यालात चलते हैं। अभी देखना कि मन और बुद्धि दोनों काम करते हैं कि अलग होते हैं। भी वर्तमान में आकर बाबा ने हमको ज्ञान दिया कि मन और बुद्धि को जोड़ दो, ये दोनों एक करके अगर शिव बाबा से कनेक्शन जोड़ते हो तो वो सर्वशक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। योग की विधि है कि अपने को आत्मा समझ, फिर मुझे याद करो। तो आत्मा कैसे समझेंगे आप, तो आत्मा क्या है, आत्मा का पहले नॉलेज चाहिए, फिर बाबा का नॉलेज। तो आत्मा अलग और शरीर अलग, शरीर के पांच गुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये शरीर के गुण है। इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा, उसके सात गुण है, ये अच्छी तरह से समझना चाहिए रोज। उसको एक शब्दों में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्सियसनेस, अपने को जागृत करो, क्योंकि हर सेकंड बार बार हम शरीर को यूज करते हैं, शरीर के भान में रहते हैं। तो शरीर को भान को छोड़कर आत्मा बनना है तो अमृत वेले जब बैठते हो अपने आप से बात करना है, तो बात करने से पहले उसका ज्ञान चाहिए, तो ये ज्ञान स्पष्ट हो कि आत्मा के सात गुण है। जो आत्मा जब परम धाम से धरती पर आई तो कैसे आई थी, पहले संपूर्ण पवित्र थी, स्वच्छ थी। तब बाबा कहता है आप कौन हो, आपका स्वमान याद दिलाता है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं, कहता है ना स्वमान है। जब आत्मा परम धाम से धरती पर उतरी संपूर्ण पवित्र आई थी हम, तो आप कंपेयर करते हो जब पहले शुरू में आया था और अभी क्या हूं मैं, दोनों में अंतर क्या है पता होता है, क्या करना चाहिए और क्या बनना चाहिए। तो पहले कैसे आया था मैं, बिल्कुल पवित्र था, ये मेरा पहला गुण है। फिर दूसरा जब मैं आया तो कैसे था, बिल्कुल शांत शीतल था, विधि पूर्वक एक एक को जागृत करो। तीसरा जब मैं आया कैसे आया, बिल्कुल सुख भोगने के लिए आया था, सुख स्वरूप आत्मा था। और कहां से मैं आया, शिव बाबा के पास था मैं, बाबा का सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं मैं, बाबा ने सब प्रकार की शक्तियां दी थी, तो मास्टर सर्वशक्तियां सर्वशक्तियों से भरा हुआ था मैं। और क्या था, बाप कौन है, ज्ञान का सागर है, बाबा ने सब प्रकार का ज्ञान भी दिया था, तो ज्ञान स्वरूप आत्माओं में। और छठवां फिर है कि आत्मा संतुष्ट, मांगने वाली नहीं, भरपूर, किसी प्रकार की इच्छा रखने वाला नहीं, संतुष्ट आत्मा बनकर के आई थी। और आठवां है आनंद स्वरूप। ये एक एक गुणों को रोज याद करना चाहिए। उसको कहते अपने गुणों को रोज याद करो, जागृत करो, मेरे गुण कौन से हैं, और विधि पूर्वक हो। फिर आत्मा के ये गुण है, आत्मा क्या करती है, आत्मा के गुणों को जानना चाहिए। और ये गुणों को याद करते हुए शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो कर्म करते हो, ये दो प्रकार से कर्म रिकॉर्डिंग होता है, और उस कर्मों के अनुसार शरीर बनता है। आपको मुझे ऐसा शरीर चाहिए, वो आपके हाथ में, तब कहते हैं भविष्य आपके हाथ में है। अगर आपको ऐसे मकान बनाना है, पहले प्लान करेंगे ना, वो प्लान बनाते समय सोचते हो मेरे जेब में कितने पैसे हैं, उस अनुसार प्लान बनाते हो। तो अभी अगर आपको सत्युग में ऐसा जीवन चाहिए, तो अभी सोचना है, संगम पर बीज बोने का समय है ये। जैसे अभी बीज बोते हो, उसी अनुसार सारे कल्प में आप सुख शांति संपन्न जीवन अनुभव करेंगे। तो अभी संगम पर पूरा ध्यान चाहिए, एक एक सेकंड। तब बाबा ने अभी कहा कि बच्चे संगम का एक सेकंड एक घंटे के समान है। तब हर कदम, हर श्वास, हर संकल्प करते समय याद रहे यह संकल्प किस प्रकार का उठ रहा है। तो इसके लिए आत्मा का यह पूरा ज्ञान चाहिए। आत्मा शरीर में कहां रहती है, कैसे कर्म करती है, कम से कम जब आप योग में बैठते हो, अभी आत्म अभिमानी कैसे बने, अशरीरी कैसे बने, अव्यक्त स्थिति में स्थित कैसे हुए, विधेयी कैसे बने, क्योंकि आत्मा समझ फिर याद करो का। जब आप योग में बैठते हो तो मन और बुद्धि, मन के अंदर एक विचार आता है, बुद्धि खाली है, बुद्धि के अंदर और कुछ पुराने बातें याद आएंगी। तो यहां से वहां तक चलना है, दोनों पांव से चलेंगे ना कि एक पांव से चलेंगे, तो आत्मा के भी दो पांव है। योग एक यात्रा है, तो यात्रा के अंदर यहां से परमधाम तक चलना है तो दोनों पांव का यूज होना चाहिए। तो कैसे यूज करेंगे आप, तब बाबा ने कहा मन बुद्धि मेरे से जोड़ो। दो तार अगर जोड़ेंगे तब करंट आता है, एक तार जोड़ेगा तो नहीं आएगा। तब योग में बैठते समय अशरीरी बनने के लिए पांच प्रश्नों का जवाब ढूंढना चाहिए। मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, तो ये दोनों एक हो जाता है। इसके बीच में अगर दूसरा कोई भी विचार नहीं आता है, तब कहेंगे आप आत्म अभिमानी बन गए। आपको भी फीलिंग होता है दूसरा कोई विचार नहीं आया। जैसे आपको नीचे से स्टेज पर आना है तो ये पांच सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ना, आप सारे दिन में 10 दफा भी चढ़ो तो भी पांच विधि पूर्वक एक के बाद एक एक सीढ़ी चढ़ के आएंगे ना। तो जब भी आप योग में बैठते हो, सबसे पहले मन प्रश्न करता, अपने आप से बात करो, फिर बाबा से रूरियान करो, तो आपके आवाज, आपके वाइब्रेशंस ऊपर की ओर जाएंगे। और शरीर समझ करके अगर बाबा से रूरियान करते हो, उसका नाम है भक्ति। भक्ति में भी भगवान से बात करते हैं, वहां भी रूरियान करते हैं, लेकिन आत्मा समझते नहीं है, इसलिए आप उसके वाइब्रेशंस तरंगे इस तरफ जाते हैं, इधर उधर बिखरते हैं। अभी आत्मा प्रकाश है, तो प्रकाश स्वरूप में स्थित होकर अगर भगवान क्या भगवान से बात करते हो, तो आपके वाइब्रेशंस ऊपर जाते हैं और बहुत तीव्र गति से जाते हैं। इसलिए कहते हैं शरीर समझ के, अगर ये माइक्रोफोन नहीं होता था मैं बात करूं, मेरा आवाज यहां से यहां ही पहुंचेगा, है ना। अगर आत्मा समझ करके आत्मा विचार करती है, उसके संकल्प बहुत तीव्र गति से चलते हैं, उसके वाइब्रेशंस बहुत तीव्र गति से चलते हैं। इसलिए एक शब्द कहते हैं वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। आवाज शब्द जो है हमें आदत बन गई है कि शरीर के द्वारा बात करना है। तब कहा मौन की भाषा, कुछ भी नहीं चाहिए, आपका मन संकल्प करता, वो कैसे करना, उसको कहते हैं औरों को चलते फिरते दुआ दे दो, मनसा सेवा कहते हैं उसको। जब योग में बैठते हो तो मन प्रश्न करता, अपने आप से बात करो, कैसे करेंगे, तो मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। दूसरा प्रश्न पूछो, अगर मैं ये हूं तो मेरा रूप क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देता। आपने 7 दिन के कोर्स के अंदर ये ज्ञान सुना हुआ है, लेकिन कहते हैं सुनने के बाद समझ में आया, सुना तो बहुत कुछ, पढ़ा भी बहुत कुछ है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, तो आचरण में नहीं आता है। सुनने के बाद समझ में जो आया, समझने के बाद आचरण में आता है। तो आप परीक्षा ले लो अपने आप से कि मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, तो मेरी बुद्धि के अंदर यह सब समझ में आया। तो एक प्रश्न पूछो, अगर समझ में है तुरंत बुद्धि जवाब देती है, मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, कंगुली जुट गई। दूसरा पूछो, अगर मैं ये हूं तो मेरा रूप क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है, कोई संशय नहीं है, डगमग नहीं है, बुद्धि को स्पष्ट ज्ञान है। हां उस दिन बहन जी ने कहा था मेरा ये रूप है, तुरंत दूसरी अंगुली जुट गई। तीसरा पूछो, अगर मेरा ये रूप है तो मेरे गुण कौन से है, अभी सुनाया एक एक गुणों को याद करो तो गुण जागृत होते हैं, मेरे ये 7 गुण है, तीसरी अंगुली जुट गई। चौथा पूछो, अगर मेरे ये 7 गुण है तो मैं इस शरीर में बैठ के क्या करता हूं, इस वो भी बताया आपको अभी, इस ब्रकुटी के बीच में बैठकर इस आंखों से देखता हूं, अगर इधर है आंखें घुमाता हूं, इधर क्यों घुमा रहा हूं, इधर का देखना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं तो मुंह खोलते हो, तो आत्मा इस ब्रकुटी में बैठकर शरीर का उपयोग करती है, शरीर को चलाती है। पांचवा, अगर मैं शरीर को चलाता हूं तो पांचवा मैं आया कहां से, हम जानते हैं मिट्टी में जो चीज बनती है वो खा के शरीर बड़ा हो गया, कल कहां जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा, तो मैं कहां से आया, पांचवा प्रश्न। अब संबंध जुट जाता है, मैं ऊपर से आया, फिर योग करना आएगा। तब तक पहले ये 5 प्रश्न, ये दोनों अंगुली जोड़ना चाहिए, इसको कहते हैं अगर मन और बुद्धि इसके बीच में दूसरा कोई विचार नहीं आया तो पूरी एकाग्रता है, मन ने प्रश्न किया बुद्धि ने जवाब दिया। अगर उसके बीच में दूसरा कोई आ रहा है, कहां से आया, वो पूछ लो कहां से आया, हां बुद्धि अभी तक स्वीकार नहीं करती है ये मेरा रूप है, दूसरा शरीरधारी का रूप आता है, तो बुद्धि के अंदर अभी भी समझ में नहीं है, तो दोबारा पूछो मेरा रूप क्या है, ये शरीर का रूप है, तो समझाओ नहीं मेरा रूप, मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु। तो ये रोज अमृत वेले जब बैठते हो ये 5 प्रश्न अगर जब पूछते हो आप, उसके बीच में दूसरा कोई विचार नहीं आ रहा है, आपको महसूस होता है ये शरीर अलग और मैं अलग हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, तो उसी में खड़े हो जाओ, कितना सेकंड ठहर सकते हो, तब बाबा कहते अशरीरी बनकर फिर 5वां प्रश्न आया मैं कहां से आया, फिर ऊपर जाएंगे। तो शिव बाबा को याद करने के तरीका है, तो पहले अशरीरी बनना चाहिए, ये 5 प्रश्नों का जवाब चाहिए, जब तक ये 5 प्रश्न दूसरे विचार न आते हुए अगर आप सॉल्व करते हो तब कहेंगे आपका मन और बुद्धि स्वच्छ है, एकाग्र होता है। 5 मिनट के अंदर योग में बैठते अशरीरी बन गए तो आपके संकल्प, फिर उसके बाद आप बाबा से बात करो, आपके संकल्प अपने आप ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा हल्की है, प्रकाश है, लाइट है, लाइट के वाइब्रेशंस अपने आप ऊपर चले जाते हैं। अगर उसके पहले अगर आप रूरियान शुरू करते हो, भक्ति में वो करते थे शरीर समझते थे, है ना, तो शरीर समझते हो, शरीर के वाइब्रेशंस भारी होते हैं ऊपर, तब कहते बाबा सुनता नहीं हमारा आवाज, बाबा कहते हैं मैं बच्चों को देखता हूं, सुनता हूं, बच्चों की सेवा के लिए आया हूं, लेकिन बच्चे अभी तक आंखें बंद करके बात कर रहे हैं, आंखें खोल करके, है ना, अगर अपने आप को अवेयरनेस हो कि मैं आत्मा हूं विधि पूर्वक, तो इसको कहते हैं अशरीरी बनना है। ऐसे चलते फिरते हुए भी बाबा ने और एक विधि बताया, नंबर वन राजयोग है ये। अगर आप रास्ते पर चलते समय भी आत्म अभिमानी हो, कैसे पता चलेगा? तो उसके बाबा ने बहुत समय से बहुत प्रकार की विधियां बताई। कहा बहुत दफा बच्चे संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी आप 108 की माला में आ सकते हो। सिर्फ एक काम करना है। क्या करना है? वो रास्ते पर चलो, संसार में 24 घंटे काम करो। आज भी कहा कर्म छोड़ना नहीं, कर्म सन्यासी नहीं, कर्म करते हुए अब ध्यान रहे मैं आत्मा, सामने वाले को देखते ही श्रेष्ठ संकल्प जागृत होना चाहिए। तो वो क्या शुभ संकल्प है? तो बाबा ने कहा उसको, आपके सामने कोई भी आता है उसको खाली हाथ भेजना नहीं। तो क्या देंगे आप? आप कहेंगे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम किसके बच्चे हैं? सर्वशक्तिवान शिव बाबा तो दाता है। तो आप दाता के बच्चे, बाबा से लेके कुछ दे दो, अपने जेब से कुछ देना नहीं है। तो नंबर वन राजयोग है ये, रास्ते पर चलो, किसी पर भी नजर गई तुरंत बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। हम नहीं देख सकते, हमारे पास नहीं। बाबा से, बाबा ने कहा संगम पर शिव बाबा बच्चों के साथ है, बच्चों के लिए सेवा के लिए निरंतर उपस्थित है। बच्चे उस संगम पर मेरा उपयोग करो, सारे कलप में फिर आपके जेब में है वो यूज करेंगे आप, क्योंकि बाबा नहीं होगा वहां। अभी संगम पर हर सेकंड हर सेवा में बाप को साथ रखते हुए सेवा करो। तो कैसे करेंगे? रास्ते पर चलते हो, कोई भी दिखाई दिया, देखते आप पूछ ले, चेकिंग करो, एक घंटे में देख लो आप। हम बचपन शुरू में ये चेकिंग करते थे। अगर आप देखो 69-70 की मुरली पढ़ो शुरू शुरू की, तो बाबा ने कहा बच्चे बाप तो आपकी सेवा के लिए आया हुआ है। बाबा को याद करने से पहले स्वयं को पहचान लो, अपने स्वमान में स्थित हो जाओ। तो ये पहला चाहिए। अगर पहला पाठ पक्का नहीं है तब आप कहते हो बाबा के योग में बैठते तो नींद आ जाती है, व्यर्थ विचार आते हैं, क्यों? अपने स्वरूप में स्थित नहीं हुए हो। अपनी शक्तियों को, मन बुद्धि को चलाना नहीं आता है। तो पहले इसको अच्छी तरह से समझना, इसके अंदर कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। स्पष्ट ज्ञान दिया है बाबा ने, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। तो मन योग में बैठे समय क्या करना चाहिए, चलते समय क्या करो? अगर आपको याद है मैं आत्मा हूं, किसी को देखते आपकी नजर भ्रकुटी में जाती है। अगर शरीर समझते हो तो शरीर तरफ नजर जाती है। यह पहला, शरीर अभिमानी हो आत्मा अभिमानी हो। फिर अगर आत्मा सदा शुभ सोचती है, आत्मा स्वच्छ है, उसके मन में जो भी उत्पन्न होगा वो स्वच्छ विचार होगा। उसकी प्रूफ, किसी को देखते आत्मा शिव बाबा कौन है? निरंतर दाता है वो। तो आत्मा परमात्मा के हम बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे होंगे ना, तो बच्चों का भी स्वभाव वही है। किसी को देखते ही तुरंत मुझे कुछ देना चाहिए, क्या दे दूं? तुरंत विचार आएगा बाबा इस आत्मा को आप शांति की शक्ति दे दो, इसको बाबा ने कहा दुआएं दे दो, औरों के प्रति शुभ सोचो, थिंक पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव भी क्या सोचेंगे आप? और किसी को देखा, बाबा इस आत्मा को पवित्रता की शक्ति दे दो। बाबा के पास 8 शक्तियां है सर्वशक्तिवान का, एक एक शक्ति अपने मन में निरंतर चलता जा रहा, चक्कर शक्तियों का चक्कर चलता रहे। अगर कई खाली समय है तो याद आएगा आज बाबा ने मुरली में यह कहा था, अपने आप ज्ञान का चिंतन चलेगा, क्योंकि बुद्धि मन स्वच्छ है। और सुनते समय बुद्धि स्वच्छ थी, अच्छी तरह से सुना है तो बुद्धि आपको याद दिलाती आज बाबा ने यह कहा था। ज्ञान अपने आप जागृत होगा, क्यों? आत्मा को पढ़ाया है। तो आत्म अभिमान इसको चेकिंग चाहिए, अपने आप अभ्यास नहीं होगा, क्योंकि हमें सवेरे से रात तक आंखें खोलू कौन दिखाई देता है? शरीर ही दिखाई देता है, चमकता हुआ सितारा प्रकृति में दिखाई नहीं देता है। लेकिन पहले अगर अमृत वेले आपने अभ्यास किया, मैं ये हूं, अगर ये स्मृति है तो चेकिंग करो, एक घंटे के अंदर सवेरे 7 से 8 जब संबंध संपर्क में आते हो तो चेकिंग करो, कितने लोगों को देखा मैंने आज, किस दृष्टि से देखा। 50 लोगों को मिले अब तो देख लो, 5-10 लोगों तक जब देख रहा था, 5-10 भाइयों को, तब याद था मैं आत्मा हूं, फिर भूल गया। तो चार्ट लिखेंगे, बाबा ने कहा चेकिंग करेंगे तो पता चलेगा मेरे अंदर किसकी स्मृति थी, तो इस स्मृति को बढ़ाना चाहिए दूसरे घंटे में ही, एक दिन इंतजार नहीं करना। अरे देखो 5 मिनट सिर्फ आत्मिक स्मृति थी, 55 मिनट में देह की स्मृति में था, तुरंत दूसरे घंटे में चेंज करो, अभी बढ़ाना चाहिए, अभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दूसरे घंटे में 6 मिनट हो जाएगा, तीसरे घंटे में 7 मिनट होगा, बूंद बूंद मिलेंगी ना, एकदम नहीं बनेगा आत्म अभिमानी। तो चेकिंग चाहिए, और किसी को देखते ये लिखो, रास्ते पर चल रहे हो किसी को देखते ही मन, खाली मन शैतान का काम करेगा, उसकी आदत बनी हुई है, बहुत जन्मों से आदत बनी है। उस आदत को परिवर्तन करने के लिए बार बार अटेंशन दे दो कि मुझे इनको देखते क्या करना चाहिए। किसी को देखते ही बाबा से शक्ति लेके दान करो, मेरे पास तो नहीं, आप तो नहीं दे सकते हो तो, लेकिन बाबा से लेके तो दे सकते हो। अगर मन को ऐसे काम देंगे तो मन बिजी रहेगा, बिजी मन के अंदर दूसरे विचार उत्पन्न नहीं होंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे तो दूसरे विचार आते हैं। तो मन को बिजी रखने का तरीका है, ऐसे जब बैठते हो खास अमृत वेले या शाम को, तो यह मन बुद्धि को एक करके दोनों की यात्रा चाहिए। दोनों जितना समय परमधाम में बाबा से जोड़ते हो तो शक्तियां ग्रहण करते हो। जैसे उदाहरण के लिए देख लो आप, अगर दिन में आप यहां बैठे हो, सूर्य बाहर आया हुआ है, लेकिन सूर्य की किरणें आपको नहीं लगती है, क्यों? आप हॉल के अंदर बैठे हो, आपके ऊपर छत है, गर्मी लगती है, पसीना नहीं आता है, क्योंकि सूर्य की किरणें आपके शरीर को नहीं लग रही है। नहीं तो सूर्य की किरणों का क्या काम है, शरीर को लगते ही 5-10 मिनट के अंदर अपने आप पसीना निकालता है, ये सूर्य शरीर की गंदगी निकालता है। और एक सूर्य है सर्वशक्तिवान शिव बाबा, वो किसका पसीना निकालता है? आत्मा का निकालता है, इसलिए उसको पतित पावन का, पतित आत्मा को, पतित शरीर को नहीं, पतित आत्मा को पावन बनाता है। लेकिन आत्मा शरीर के अंदर बैठी हुई है, शिव बाबा शक्ति देता, वो शरीर को लगती है, आत्मा को लगना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जैसे शरीर को सूर्य की किरणें चाहिए, आपने क्या किया, शरीर को इस हॉल से बाहर लेके गए, सूर्य की किरणों के नीचे खड़े हो गए आप धूप में, सूर्य की किरणें शरीर पर निरंतर पड़ती रही, 5-10 मिनट के अंदर अपने आप, चाहो या नहीं चाहो आप, अपने आप पसीना निकालता है। तो ऐसे यहां भी अगर आत्मा समझ के बैठते हो, आत्मा को जागृत करते हो, आत्मा शिव बाबा के पॉजिटिव शक्ति को ग्रहण करती है, और वो शक्ति आत्मा के पाप को मिटाती है, आत्मा की बैटरी को चार्ज करती है। तब बाबा कहते हैं आत्मा समझ के बैठो। आत्मा समझने की विधि, तो ये 5 प्रश्न चाहिए। इसको भूल के मैं आत्मा हूं जानता हूं, नहीं, हर सेकंड बार बार आप शरीर के भान में आते हो, क्योंकि शरीर को यूज करते हो, इसलिए बार बार अपने को जागृत करना है, ये रोज अभ्यास चाहिए। अगर इस स्थिति में स्थित होकर बैठते हो तो आत्मा शक्ति का अनुभव करती है। अगर रोज 5-7 गुणों को आप जागृत करते हो तो सारा दिन में याद रहता है, हां सामने वाला गुस्सा करता है, मुझे नहीं करना चाहिए, मेरा गुण नहीं है, मेरा गुण शांति का गुण, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो ये याद रहता है। सवेरे सवेरे अपने को जागृत नहीं किया तो सारे दिन में वो स्मृति नहीं रहती है, कितना भी अपने ज्ञान सुना है। इसलिए कहते हैं श्रवण से आचरण में नहीं, श्रवण के बाद अभ्यास चाहिए। तब बाबा रोज कहता है, अभी भी बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेला, सवेरे खाली समय होता है, सवेरे उठ करके 5-10-15 मिनट भी स्व इच्छा से, क्योंकि जो करेंगे सो पाएगा, है ना। सुनने से तो नहीं होगा ना, सुनने से मिलेगा कुछ नहीं, सुनने के बाद कल सवेरे बैठ करके अगर आप अभ्यास करेंगे तब आपको लगता हाँ ये गोली खाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है ना। सिर्फ गोली जेब में रख दो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, नहीं, हमने सुना है। सुनने से कुछ नहीं होगा, सुनने के बाद विधि पूर्वक सुनो और कल सवेरे यहां बैठकर देखो बाबा ने बहुत सुंदर स्थान दिया है, शांत आवाज नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, किसी का आवाज नहीं है, कोई शरीर का काम ही नहीं है। अगर सभी एक संकल्प एक ही प्रकार के संकल्प करते हो, नहीं तो कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, नहीं, सभी के मन में एक जैसा संकल्प हो तो एक शक्ति बनती है, उसको कहा संगठन की शक्ति। एक अकेला दीपक जलता है और सभी ने मोमबत्ती अगर जलाए तो कितनी रोशनी होंगी, है ना। तो संगठित रूप में कल सवेरे यहां बैठकर अभ्यास करो, तो अभ्यास जो करेंगे, जो सुना कल अभ्यास करेंगे, जो अनुभव होगा वो अथॉरिटी है, तब का अनुभव कभी भी नहीं भूलेगा। आपको घर जाने के बाद भी जब सोएंगे, अरे उस दिन अमृत वेले उठ करके अभ्यास किया था, बहुत अच्छा लगा था, ऐसे ही करना चाहिए, तो वो अनुभव आपको जागृत करेगा। नहीं तो कहा वहां भी बैठे थे योग में, नींद आ रही थी, तो अपने आप यहां भी सो जाए, वहां भी सो जाएंगे जाने के बाद। तब बाबा कहते हैं सुन करके अभ्यास करो, ये सुन करके ले जाना नहीं, नहीं घर में जाके हम नोट करते हैं घर में जाने के बाद अभ्यास करेंगे, नहीं, यहां सुनो और यहां ही अभ्यास करो, तो वो अनुभव आपके पास, वो शक्ति है, वो अथॉरिटी है, वो चाहिए। समझ में आ गया कि मैं कौन, मेरा पांचों गुण सातों गुण कौन से है। कभी भी नहीं कहना भूल से मुझे गुस्सा आता है, आता है आपको गुस्सा, नहीं, आत्मा का गुण नहीं है, मैंने गुस्सा करना सीखा है, कहां से सीखा, ये शरीर का गुण यूज किया आपने, क्योंकि आपको अपने गुण पता ही नहीं था इतना दिन, मेरे गुण कौन से है। अगर आपके पास गुण होते थे आप दूसरों का लेते नहीं थे, है ना, रोज याद नहीं करते मेरे गुण कौन से है, तो शरीर के गुण यूज करते हो, है ना। तो इसलिए शरीर के गुण को यूज नहीं करना, कभी भी नहीं कहना मुझे गुस्सा आता है, नहीं, हमने गुस्सा करना सीखा है। मेरा गुण शांत स्वरूप हूं, रोज अमृत वेला अगर उसको याद करते हो, ऐसे रात को भी शाम को भी 10-15 मिनट योग चाहिए, उस समय भी जागृत करो मेरे ये गुण है। सवेरे शाम को दोनों तर दिन दोनों दफा अगर आप अपने आप को जागृत करते हो तो निरंतर यह अभ्यास बना रहेगा। इसलिए कि अभ्यास से मनुष्य के अंदर योग्यताएं आती है, अभ्यास नहीं है, सुनने से नहीं होगा। इसलिए सिंपल कल सवेरे अभ्यास करना, ये पांच प्रश्न भूलना नहीं, आगे ऊपर पीछे नहीं करना, विधि पूर्वक। इसलिए इसको इंग्लिश में एक शब्दों में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने आप को जागृत करो। कैसे जागृत करेंगे, गुजराती में उसको कहते हैं स्वाध्याय, स्व का अध्ययन करो। मैं कौन, अपने आप से पूछो, आप बुद्धि क्या जवाब देती है, फिर पूछो मेरा रूप क्या है, फिर पूछो मेरे गुण क्या। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का उपयोग ये राजयोग है, सिर्फ निल होके बैठना राजयोग नहीं है। ज्ञान का उपयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करो, फिर ज्ञान के द्वारा जो शक्ति प्राप्त होती है, शक्ति का प्रयोग अपने संस्कारों के ऊपर करो, तब पुराने संस्कार वो मिट जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। समझ में आ गया। ओम शांति।